ब्रह्म का रूप और उसका रूप। संसार में ऐसा क्या है जो उसका रूप न हो? क्या है जो ठीक ठीक उसका रूप बता सके? वह यह भी नहीं, वह भी नहीं, ऐसा भी नहीं, वैसा भी नहीं, नेति नेति नेति। मगर मनुष्य के भीतर कवि, उसके भीतर का कलाकार, उसमें का मनीषी इसकी सृष्टि करेगा ही। सीधे रास्ते न हो सके तो टेढ़े से चलकर भौतिक रूप से काम न चलेगा तो अभिनव कल्पना के बल पर वह अनंत है, पर मनुष्य उसकी अनंतता को अभिव्यक्त कैसे करेगा? उसके पास क्या है जो अनंतत्व को रूप दे सके? है क्यों नहीं? वह जो शंख में एक आवर्त है, घुमाते जाओ पर समाप्त होने का नाम नहीं लेता। न स्थान है, न स्थान में और न काल में। उसी आवर्त मात्र को अनंत का प्रतीक क्यों नहीं माना जा सकता? इस आवर्त को आधार करके स्वस्तिक और प्रणव की रचना हुई। ब्रह्म शांत है, पर शांति को रूप कैसे दिया जाए? मनुष्य ने उसकी भी कल्पना की। सारांश उसके अरूप को रूप देने के नाना उपाय आविष्कार किए और यहीं से प्रतीक मूलक सृष्टि का सूत्रपात हुआ। मनुष्य ने ब्रह्म को व्यापक समझा, परंतु इस व्यापकता और सर्वशक्तिमत्ता की कल्पना के कारण मन सदा अपने को उस शक्ति के नीचे समझता रहा। धीरे धीरे उसने ब्रह्म को ईश्वर नाम दिया, ईश्वर अर्थात समर्थ, ऐश्वर्यमय। इस ऐश्वर्य बोधक के कारण मनुष्य ने उसे अपने से अलग समझा, अपने से बड़ा समझा, अपना उद्धार करता समझा। इस मनोवृत्ति को धार्मिक मनोवृत्ति कहते हैं, परंतु साथ ही मनुष्य यह सदा समझता रहा है कि वह ब्रह्मा है, वह व्यापक है, वह हमसे अलग नहीं। इस मनोवृत्ति को दार्शनिक कहते हैं। ये दोनों बातें मनुष्य की सभ्यता के विकास में बहुत बड़ा हाथ रखती हैं। समय समय पर इन दोनों वृत्तियों में कभी यह कभी वह प्रबल होती रही। इसके फलस्वरूप संसार में नाना प्रकार के धर्म मत और दार्शनिक मतवाद पैदा होते रहे। इन दोनों मनोवृत्तियों के फलस्वरूप मनुष्य जाति ने अनेक प्रकार के चित्र, मूर्ति, मंदिर और निर्माण किए, अनेक गीति, कविता और नाटक लिखे, ललित कला की अभूतपूर्व समृद्धि संप्रदान की। पर सर्वत्र वह कभी धार्मिक और कभी दार्शनिक मनोवृत्ति का परिचय देता रहा। अचानक मध्यकाल की भारतीय साधन में हम एक प्रकार के कवियों और चित्रकारों को एक अभिनव सृष्टि में तल्लीन रखते हैं। वे मानते हैं कि उस शक्ति में ऐश्वर्य है, इसलिए निश्चय ही वह बड़ी है, अभेद्य है, अच्छेद्य है। साथ ही वे यह भी स्वीकार करते हैं कि वह ब्रह्म है, वह व्यापक है, काल में भी और स्थान में भी, अर्थात वह अनादि है, अनंत है, अखंड है, सनातन है, पर ये दोनों उसके एकांगी परिचय हैं। ऐश्वर्य भी उसका एक अंग है, ब्रह्मत्व भी उसका एक अंश है। इन दोनों की अतिक्रांत करने की स्थिति है उसका माधुर्य। इसका साक्षात्कार होता है प्रेम में, जहाँ वह साधारण से साधारण आदमी का समान धर्मा है। वहीं इस प्रेम की प्यास में अपना सब कुछ भूल जाता है, वहीं अहीर की छोहरियों के सामने नाचता है, गाता है, कल्लोल करता है। जहाँ ही अनादि अनंत अखंड अच्छेद अभेद सुवेद बतावे, ता ही अहीर की छोहरियां छछियां भरी छाछ पे नाच नचावे। जो उस ज्ञान में समझते हैं, जो उसे ज्ञान में समझते हैं, ब्रह्म समझते हैं, वे उसके एक अंश को जानते हैं, पर जो उसे प्रेम समझते हैं, वह उसके संपूर्ण अंश को मानते हैं। ये कवि और साधक ही प्रथम साहस के साथ कहते सुने जाते हैं कि मोक्ष परम पुरुषार्थ नहीं है, प्रेम ही परम पुरुषार्थ है, प्रेमा पुमथो महान। इस मध्यकाल की साधना के समानांतर चलने वाली एक दूसरी प्रचंड प्रेम धारा यूरोप में उसी काल में आविर्भूत हुई थी, वह थी ईसाई साधना। प्राचीन यहूदियों के धर्म ग्रंथों के अनुसार यह संसार खुदा के हाथ से खिसक कर गिरा हुआ यंत्र है, इसलिए यह पापमय है। इसमें पैदा होने वाले मनुष्य स्वभावतः ही पापमय है। इनके और ईश्वर के बीच एक बड़ा भारी व्यवधान रह गया है। इस व्यवधान के कारण मनुष्य परमात्मा भगवान के पवित्र संसर्ग से पापात्मा भगवान के पवित्र संसर्ग से वंचित होकर शैतान का शिकार बन गया है। मनुष्य की इस दुरावस्था से करुण विगलित होकर प्रभु ईसा मसीह ने अवतार धारण करके इस व्यवधान को भर दिया, जिसके सिर पर उस करुणा मूर्ति के हाथ रख दिया वही तर गया। पतितों पर इसकी विशेष दृष्टि है, दीनों की पुकार पर वह दौड़ पड़ता है और आत्तों को वह शरण देता है। अद्भुत प्रेममय है वह पतित पावन, वह दीन दयालु, वह अशरण शरण। मध्यकाल की भारतीय साधना में भी श्री कृष्ण या श्री रामचंद्र जी ठीक उसी प्रकार दिखाई देते हैं। कहीं हम उन्हें मामांशी माशांसी गीत जटायु की धूरी जटानसो झारते देखते हैं, कहीं अस्पृश्य शबरी के जूठे बेरों को प्रेम सहित खाते देखते हैं, कहीं दीन सुदामा के पैरों को आसुम के जलसो धोते देखते हैं, ठीक उसी प्रकार का पतित पावन रूप, दीन दयाल रूप और शरण शरण रूप। मगर वैष्णव कवि यहीं आकर नहीं रुकता। ईसाई साधक की विगल द्वाष्पा भावुकता ही उसकी नैया को पार कर देती है। उसे आगे जाने की जरूरत नहीं, वह वैष्णव कवि नैया पार करने की चिंता में उतना समय नष्ट नहीं करना जानता। उसे अर्थ नहीं चाहिए, धर्म नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए, भक्ति चाहिए, प्रेम। अर्थ न धर्म न काम रति, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रघुपति भगति, यह वरदान निदान। संसार के उपासना के इतिहास में रूपों की उपासना की कमी नहीं है, परंतु कहाँ है वह साहस, वह प्रेम पर बलिदान कर सकने की अद्भुत क्षमता जो मध्यकाल के इन साधक कवियों ने ठोस रूप के प्रति प्रकट की। या लकुटी अरु कामरिया, राज तिहु पुर को तेजिडारो, आठो सिद्धि नवो निधि को सुख नंद की धेनु चराए विसारो। यह उपास्य रूप ही चरम सृष्टि है, इसके आगे रूप की रचना असंभव है। यहाँ आकर भगवान मनुष्य के अपने हो जाते हैं, वह बड़े भी नहीं छोटे भी नहीं, हमारे माता पिता हैं, भाई बहन हैं, सखा सखी हैं, प्रेमी प्रेमिका हैं, पुत्र पुत्री हैं, हम जो चाहें वही हैं। वेदों और पुराणों ने जिसका कोई उपयुक्त पता नहीं बताया, इंजील और कुरान जिसकी व्याख्या करते थक गए, दर्शन और धर्म ग्रंथ जिसका कोई संधान न पा सके, वह कितना सहज है, कितना निकट है, वह हमारा प्रेमी है। ब्रह्म जो भाष्य पुराण में तेही दख्यो पलोटद राधिका पायन,